नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनता से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का स्मरणोत्सव राष्ट्रपति भवन में मनाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाज न करने वाली पत्नी के बारे में आलस्य या जानबूझकर निर्भर रहने की धारणा को खारिज किया। कहा, भरण पोषण तय करते समय पत्नी के योगदान की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। कहा, भारत टैक्सी सहकारी समिति चालकों को उनके काम का स्वामित्व प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। अशोक मंडप के पास उनकी प्रतिमा की स्थापना एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, डॉ एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर एल मुर्गन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनमें अनेक प्रतिभाएं थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राजगोपालाचारी के आदर्शों पर कार्य करना ही उन्हें दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि देश की जनता उनके जीवन और विरासत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ेगी।
जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीयों चेतना और समस्त भारतवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस अवसर पर कहा कि भारत का औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति का सफर कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह शासन, कानून, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में सतत परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलामी की मानसिकता से आजादी के दृष्टिकोण को कई पहलों के माध्यम से साकार किया गया है।
In our journey of breaking away from the colonial legacy, India's movement away from colonial influence is not a single event. It is an ongoing transformation across governance, law, education, culture, and national identity.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पढ़ा, जिसमें प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय प्रांगण में राजा जी की प्रतिमा के अनावरण को देशवासियों के लिए अपार गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा,
टुडे राष्ट्रपति भवन सेंस नॉट एज अ सीट ऑफ पावर।
आज राष्ट्रपति भवन केवल सत्ता का केंद्र नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता में निहित लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। राजा जी उत्सव जैसी पहल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण इसे और सुदृढ़ तथा पुनः स्थापित करता है।
श्री सी राजगोपालाचारी जी री इन्फोर्स दिस डायरेक्शन।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ ने आज कहा कि वो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 12 मार्च को वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे की जांच करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय से इस सुझाव पर जवाब मांगा है कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नया कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित न किया जाए। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अनुशंसित इन दीर्घकालिक समाधानों को लागू करने के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाज न करने वाली पत्नी की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि गृहिणी का श्रम कमाने वाले पति को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है और भरण पोषण तय करते समय उसके योगदान की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि भरण पोषण भत्ते का निर्धारण करते समय एक पत्नी की बेरोजगारी को आलस्य या जानबूझकर निर्भरता के बराबर नहीं माना जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहवृत्ति के दौरान कानून को न सिर्फ पत्नी को वित्तीय आय की स्वीकृति देनी चाहिए बल्कि घर और घरेलू संबंध में उसके योगदान की आर्थिक कीमत भी निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बिना कमाने वाली पत्नी की अवधारणा निरर्थक है। न्यायालय ने ये टिप्पणियां पिछले सप्ताह घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण देने के मामले पर सुनवाई करते हुए की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारी समिति का उद्देश्य चालकों को उनके काम का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस पहल का लक्ष्य निजी टैक्सी सेवा कंपनियों से जुड़ी समस्याओं को कम करना और लाभ चालकों को दिलाना है, न कि सहकारी समिति को।
ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां है वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो।
भारत टैक्सी की अनूठी सारथी दीदी पहल का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि सुविधा के माध्यम से महिला यात्री अपनी यात्रा के लिए महिला चालकों का चयन कर सकती हैं।
आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे। जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी दे। इससे किसी का कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा संचालित टीचर ऐप 2.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह ऐप शिक्षण को और अधिक आकर्षक और उत्पादक बनाने के लिए उपकरणों, सामग्रियों और डैशबोर्ड की सुविधा शिक्षकों को प्रदान करेगा।
भारत की एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे विभिन्न आयामों में AI की ओर बढ़ रहा है। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो आवश्यकता रखती है उसकी जो पर्सनल असिस्टिव टूल चाहिए, ऐसे टीचर्स ऐप उसी को एक समाधान देने वाला है। हम आने वाले दिनों में टीचर्स को AI एनेबल कराएंगे तो स्टूडेंट भी AI एनेबल होंगे।
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की राहवीर योजना को राजधानी में लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रूपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों को समय पर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत सिस्टम आधारित स्वचालित अपील प्रणाली को शुरू करने और उसे मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान श्री सिंह ने आवश्यक सुधारों पर मंथन किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल अग्रीमेंट पोर्टल के उन्नयन पर विश्लेषण किया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के द्वारा आज नागरिक हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पारित बजट में राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने, नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान, जन सुविधाओं के विस्तार और सतत विकास हेतु अनेक घोषणाएं की गई। एक रिपोर्ट।
इन घोषणाओं के अंतर्गत एक सड़क एक दिन सफाई योजना, साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभागीय समूह का गठन, सामग्री पुनः प्राप्ति केंद्र की स्थापना और निगम की खाली भूमि पर त्रिवेणी वृक्षारोपण जैसे कार्य शामिल है। साथ ही हर्बल पार्क निर्माण, स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच, योग प्रशिक्षण और 200 वर्ग मीटर तक ग्रामीण आवासीय प्लांट को संपत्ति कर से मुक्त करने का प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों को दिए हैं कि बजट में घोषित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ किए जाए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज राजधानी के चाणक्यपुरी क्षेत्र में ट्यूलिप उत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि ये पुष्प सज्जाएं बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में आम जनता से अत्यधिक सराहना प्राप्त होने के बाद NDMC ट्यूलिप उत्सव 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन कर रही है। ट्यूलिप उत्सव में नीदरलैंड के राजदूत मारिसा गेराट्स और परिषद सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU प्रशासन ने कल रात यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 छात्र समूहों के बीच हुई हाथापाई की घटना को गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बयान में कहा कि प्रशासन को पता चला है कि कैंपस के अंदर विरोध कर रहे एक छात्र समूह ने कथित तौर पर कई प्रशासन भवनों को अवरुद्ध कर दिया था। विश्वविद्यालय ने कहा कि परिसर में उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों तथा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर हुए कथित हमले की निंदा की है। संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन ने गुंडागर्दी का सहारा लिया।
वामपंथी छात्र संगठन गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। वो सिर्फ नारे नहीं लगाते बल्कि वो मारपीट करते हैं। ABVP के लोगों के ऊपर उन्होंने हमला करने का काम किया। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन पर पत्थरबाजी हुई है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 18 लाख से अधिक साइकोट्रॉपिक टैबलेट की खेप भी जब्त की है, जिनकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 9 करोड़ रूपये बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ मुद्रा बंदरगाह के रास्ते ब्रिटेन ले जा रहे थे।
सब इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये सब ड्रग है, UK जा रही थी कंटेनर के थ्रू, मुंद्रा पोर्ट के थ्रू। तो टीम ने स्विफ्टली काम किया और कस्टम अथॉरिटी और से लाइजन किया, उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया। कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन के बाद में इसको पूरे कंटेनर को वापस मंगाया गया UK पहुंचने से पहले, जो 32 कार्टून थे।
दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि द्वारका जल शोधन संयंत्र पर बिछाई गई ट्विन रॉ वाटर पाइपलाइन को मौजूदा मेन लाइन से जोड़ने के कार्य के कारण क्षेत्र में जलापूर्ति अगले 48 घंटे के लिए बाधित रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनता से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का स्मरणोत्सव राष्ट्रपति भवन में मनाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाज न करने वाली पत्नी के बारे में आलस्य या जानबूझकर निर्भर रहने की धारणा को खारिज किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।